ஆச்சரியத்துக்கு ஒரு வித்தியாசம் சாப்பிட முடியும். சிதானந்தரூபம் நமோ வீத்ராகம் ரூபம் நமோ வீத்ராகம் நபந்தோ நமோக்ஷோ நராகாதி தோஷோ நமோக்ஷோ நராகாதி தோஷோ நயோகம் நபோகம் நோகம் நோக நோபம் நானம் நோகம் நோகம் சிதானந்தரூபம் நமோ வீத்ராகம் ரூபம் நமோ வீத்ராகம் ந ஹஸ்தௌ ந பாதௌ ந க்ராணம் ந ஜிஹ்வா ந சக்ஷுர் ந கர்ணம் ந வக்த்ரம் நிதிரம் நம் நிதிரா நமி நோ நேவோ நமீ நோ நேவோ நமச்சிதாயம் நமோ வீத்ராகம் ஜன்மம் ந மிருத்யு ந மோகம் ந சிந்தா ந க்ஷுத்ரோ ந பீதோ ந கார்ஷ்யம் ந தந்த்ரா நேதம் நேதம் நணம் நேதம் நணம் நமோ வீத்ராகம் ரூபம் நமோ வீத்ராகம் திதண்டே த்ரிகண்டே ஹரே விஸ்வநாதம் ரிஷிகேஷ வித்வஸ்த கர்மாதி ஜாலம் ந புண்ணியம் ந பாபம் ந சாக்ஷாதி காத்ரம் பாபம் ந சாக்ஷாதி காத்ரம் சிதானந்த ரூபம் நமோ வீத்ராகம் ரூபம் நமோ வீத்ராகம் ந பாலோ ந ப்ரத்தோ ந துச்சோ மூரோ நோ நோ நேதம்
न भेदम् न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णम् न शुक्लम् न मोहम् न तन्द्रा चिदानन्द रूपम् न मोहितरागम् नाद्यम् न मध्यम् न अन्तम् न चान्यत् न मध्यम् न अन्तम् न चान्यत् न द्रव्यम् न क्षेत्रम् न कालो न भाव न क्षेत्रम् न कालो न भाव न शिष्यो गुरुर्नापि हीनम् न दीनम् गुरुर्नापि हीनम् न दीनम् चिदानन्द रूपम् न मोहितरागम् न मोहितरागम् इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपम् न चैत्यं स्वरूपम् न चान्यो न भिन्नम् न परमार्थमेकम् न भिन्नम् न परमार्थमेकम् चिदानन्द रूपम् न मोहितरागम् न मोहितरागम् आत्मा राम गुणाकरं गुणनिधिम् राम गुणाकरं गुणनिधिम् चैतन्यरतनाकरं चैतन्यरतनाकरं सर्वे भूतगतागते सुखदुखे भूतगतागते सुखदुखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयम् हरिवंशहर्षहृदयम् श्रीमान् हृदाभ्युच्यताम्
वितराग भगवान की अपन परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ जो है वो समझ रहे थे कैसे रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं और वे हमारे कल्याण में निमित्त बन सकते हैं यदि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो वे हमारे कल्याण में निमित्त बनते हैं। कोई भी भगवान या पंच परमेश्वरी हमारे कल्याण में निमित्त तब बनते हैं जब हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अगर हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो वे हमारे कल्याण में निमित्त नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए जब हम पंच परमेश्वरी को अपने कल्याण में निमित्त मान रहे हैं तो फिर हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। वो ही अपन यहां पर व्यक्त कर रहे हैं अपनी श्रद्धा। बुद्धि रिद्धि और उसके बाद चारण रिद्धि और फिर विक्रिया रिद्धि और बल रिद्धि, इन सब रिद्धियों के बारे में अपन ने चर्चा करी। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद कहे गए, फिर चारण रिद्धि के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से भेद किए हैं। इसमें तो उन्होंने जंघाचारण, अग्निशिखाचारण, श्रेणी, फल, जल, तंतु, पुष्प, बीज और अंकुर, इन सबको चारण रिद्धि माना है। अन्य आचार्यों ने और भी प्रकार से रिद्धियों के वर्णन, चारण रिद्धि के वर्णन किए हैं। और आकाश में स्वच्छंद रूप से विहार करना, ये आकाश गामित्व रिद्धि, ये भी चारण रिद्धि का ही एक भेद है। फिर विक्रिया रिद्धि के अपन ने चार भेद पढ़ लिए थे। और बल रिद्धि तो तीन ही प्रकार की होती है, मन वचन काय की ऐसी सामर्थ्य कि जिसमें द्वादशांग का अंतर्मुहूर्त के अंदर पूरा विचार कर लेने पर भी कोई भी मन के अंदर क्या बोलते हैं उसको, थकान महसूस नहीं होती। वचन के द्वारा अंतर्मुहूर्त में और पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेने पर भी कोई थकान महसूस नहीं होती। शरीर से मासोपवास, यहां तक कि एक एक वर्ष के उपवास करने पर भी शरीर की सामर्थ्य ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसे मुनि महाराज हमारे कल्याण में निमित्त बने। सकाम रूपित्वशित्वमैश्वम रूपित्वशित्वमैश्वम काम्यमर्तर्थिमथाप्तिमाता तथा प्रतीघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणम चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना ये दो श्लोक अपन आज देखेंगे। पहले श्लोक में और जो विक्रिया रिद्धि के शेष भेद रहे थे, अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा, ये चार अपन ने विक्रिया रिद्धि के भेद पढ़े थे। और भी भेद हैं जिसमें से कह रहे हैं काम रूपित्व नाम की रिद्धि, वशित्व, ईशित्व, प्राकाम्य, अंतर्ध्यान, आप्ति या आप्ति को कहीं कहीं पर प्राप्ति भी लिखा है, और अप्रतिघात रिद्धि, ऐसी रिद्धि से संपन्न मुनि महाराज या ऋषि हमारे कल्याण में निमित्त बने। हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हम रिद्धि की वजह से इंप्रेस नहीं है, हाँ ये ध्यान रखिएगा। आप क्या सोच रहे थे कि मुनि महाराज की रिद्धि प्राप्त हो गई इसलिए हम इंप्रेस हैं, इसलिए हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने रत्नत्रय की ऐसी साधना करी है जिससे उनके अंदर परिणामों में इतनी निर्मलता आई कि उनको ये इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। हम सामर्थ्य से प्रभावित नहीं है, उस सामर्थ्य प्राप्त करने वाले की विशुद्धि से प्रभावित है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सामर्थ्य तो ऐसी और भी लोगों को प्राप्त हो सकती, लेकिन उन्होंने जो सामर्थ्य हासिल की है वो आत्मा की कितनी निर्मलता से हासिल की है, हम उसके प्रति उनके गुणानुराग वश या कि उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, ये ध्यान। अब देखिएगा ये सकाम रूपित्व रिद्धि क्या होती है, जिसमें एक साथ अनेक रूप बना लेने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, उसे कहते हैं सकाम रूपित या काम रूपित। काम का मतलब यहां पर कामना से लेना, हाँ जैसा चाहा वैसा रूप, और एक साथ जितने बनाना चाहें उतने बना सकते हैं, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं। आत्मा में जो लीन है उसको ये सब सहज रूप से प्राप्त होती हैं, पर उनका वो उपयोग नहीं करता, और प्राप्त भी उनको ही होती है जिनको की इस तरह की आकांक्षा नहीं है। हाँ, जिनको आकांक्षा रहती उनको तो ये चीजें प्राप्ति नहीं हो पाती हैं, जिनको कोई आकांक्षा नहीं है उनको ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती, जितने रूप चाहे उतने बना सकते, जिस तरह का चाहे उस तरह का बना सकते। ये काम रूपित वशित्व, वशित्व रिद्धि है। सब जीव जिनके वश में हो जाते हैं, वश में हो जाते का मतलब, अच्छा ये बताओ कोई भी किसी को अपने वश में कैसे करता है, या तो बंदूक की नोक पर या फिर अपने प्रेम के माध्यम से है, उनका प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है इसलिए सब उनके वश में है, कोई उनके विरुद्ध नहीं। उनकी निर्मलता इतनी है आत्मा की कि जो देखता है वो कहता ठीक, मेरी इनसे कोई शत्रुता नहीं है, ये तो मेरे लिए हितैषी जान पड़ रहे हैं। देखिए सब वश में हो गए कि नहीं। एक जगह लिखा भगवान की स्तुति करते हुए कि देखो तो भगवान कोई किसी को कुछ देता है तो लोग उस वो प्राप्ति की वजह से उस पर श्रद्धा रखते हैं, या कि कोई किसी का बिगाड़ कर सकता इसलिए उससे डरते हैं, इसलिए उसकी आज्ञा मानते हैं। ऐसा तो संसार में बहुत देखा हमने, लेकिन ना आप किसी का बिगाड़ करते ना किसी का कुछ भला करते, फिर भी सारे लोग आपकी आज्ञा में रहते हैं। कैसे आज्ञा में नहीं होते तो फिर अपना बैर विरोध भूलकर आपके पास कैसे बैठते। हम तो देख रहे हैं कि सांप और न्यौला भी बैठा है, जबकि आपने सांप से ये नहीं कहा कि हम तुम्हें मारेंगे अगर तुमने न्यौले से झगड़ा किया, और ना न्यौले से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब आपकी आज्ञा में है, इसलिए तो चुपचाप बैठे आपके समूह शरण में आकर के शांत भाव। ये आपकी अपनी विशेषता है। ये कैसे प्राप्त हुई, ये वशित्व सब जीवों को वश में। सब दुनिया चाहती कि हम सब जीवों को अपने वश में कर लें, हमारे मुताबिक सब संसार चले, लेकिन उसके लिए चाहिए अपने भीतर उतनी निर्मलता। वो निर्मलता जिन मुनि महाराज को प्राप्त हो जाती वही कहलाती उनके वशित्व रिद्धि, ईशित्व रिद्धि। ईशित मतलब तीनों लोकों में प्रभुता की सामर्थ्य जिनके भीतर है। वे अपनी प्रभुता नहीं बताते हैं, अपना टेरर क्रिएट नहीं करते हैं जैसे अपन लोग अपना टेरर क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो वैसा टेरर क्रिएट करेंगे कि तुम हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं। थोड़ा धन पैसा हो गया तो ऐसा आतंक जिसको कहते हैं सामर्थ्य। यहां पर उनको प्रभुता की सामर्थ्य है, उनका कोई आतंक नहीं है, पर सब जीव उनके लिए अपना ही प्रभु मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, इसलिए उनके वश में हैं। और सब जीव उनको अपना प्रभु मानते हैं, अपने कल्याण में निमित्त मानते हैं, इसलिए जो है उनके अंदर ईशित्व भी है। इस तरह ये दूसरी रिद्धि हो गई। प्राकाम्य, प्राकाम्य रिद्धि ऐसी है कि जैसे पानी पर भूमि के समान चल सकें और भूमि पर पानी के समान तैर सकें। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहना चाहिए उनको सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है ऐसा। तो इसको भी अपन आज के समय में और अगर चाहें देखें तो, हालांकि वक्त ऐसी चीज है, पर ऐसी सामर्थ्य भी किसी को प्राप्त हो सकती है कि पानी पर भी वो और ऐसे गमन करे जैसे भूमि पर चल रहा है, और जमीन पर भी ऐसे चले जैसे कि जल में चल रहा है। अब विश्वास करने की चीज है, एकदम तो नहीं आएगी। अंतर ध्यान तो अपन समझते हैं कि अभी अभी सामने थे और चाहें तो अपने आप को वहां से गायब कर दिया, वो अंतर ध्यान नाम की रिद्धि कहलाती। अदृश्य होने की क्षमता, जैसे अंजन चोर ने एक वो लगा लेता था अंजन, तो वो तो सबको देखता था और उसे कोई नहीं देख पाता था इस तरह। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की, जिनको अपनी विशुद्धि के माध्यम से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो गई, उनके शरीर को कोई नहीं देख सकता लेकिन वे सब जीवों को देख रहे हैं, इस तरह की सामर्थ्य भी है। फिर कहते हैं इसमें आपती या कि प्राप्ति। जमीन पर बैठे बैठे चाहे तो सूर्य के विमान को उंगली से छूना चाहे तो छू सकते हैं। हाँ, सूर्य चंद्र के विमानों को ऐसे उंगली से यहीं बैठे बैठे छूना चाहे, जिस चीज को मानो उत्तर पर्वत को छूना चाहे तो वहां तक हाथ चला जाएगा और वो उसको छू लेंगे। ये इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त हो गई, इसको बोलते हैं प्राप्ति नाम की रिद्धि। और अप्रतिघात, पर्वत में से भी गुजर के चले जाएं ऐसा आघात शरीर हो गया, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो गई। वज्र से भी जिनका शरीर नहीं रुकता है, ये सब आत्मा की निर्मल अवस्था प्राप्त होने पर सहज हैं। ये जितनी भी चीजें अपन देख रहे हैं कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमारे और आपके बस की नहीं है, साधारण लोगों की, लेकिन वो असाधारणता कैसे आई है? सिर्फ परिणामों की निर्मलता से। जब परिणामों की निर्मलता से ये चीजें जो हमारे लिए दुर्लभ हैं वो मिल सकती हैं, तो क्यों ना हम अपने परिणामों की निर्मलता से इन चीजों की अपेक्षा वो प्राप्त कर लें, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और शेष नहीं, मोक्ष पद प्राप्त कर लें। वास्तव में तो इन रिद्धियों को पढ़ते समय यही भाव होना चाहिए कि इनको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, हालांकि ये भी बड़ी चमत्कारिक मालूम पड़ रही हैं, लेकिन चित चमत्कार से बड़ा कोई और चमत्कार नहीं है। अपने आत्मा को प्राप्त कर लेना वही वास्तविक है, और ये रिद्धियां तो सहज रूप से और रास्ते में जैसे मिलती चली जाती हैं वैसी ही हैं। फिर एक होती है तप रिद्धि, उसकी क्या विशेषता है वो आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं, दीप्त तप नाम की रिद्धि। इनके अलग अलग लक्षण हैं। महा उपवास करने पर भी, महीनों महीनों के उपवास करने पर भी, जिनका धीरे धीरे मन वचन काय का बल बढ़ता चला जाता है, शरीर और अधिक उज्जवल और अधिक निर्मल चमकदार हो जाता है, वो कहलाती दीप्त तप रिद्धि। और इतना ही नहीं, उसमें लिखा कि जिनके शरीर की दीप्ति निरंतर बढ़ती है, इतना ही नहीं, जिनके मुख से कमल के समान सुगंध फैलना शुरू हो जाती है। जबकि होता यह है कि अगर दो चार दिन एक ही दिन उपवास कर ले तो अपने मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी हैं? और उनके लिए ये रिद्धि के प्रभाव से वे जैसे जैसे उपवास इत्यादि करते हैं, सारे शरीर से और विशेष रूप से मुख से सुगंध आना शुरू हो जाती और सारा शरीर और अधिक सुंदर मालूम पड़ने लगता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर तप्त तप रिद्धि, जैसे कि लिख रहे हैं कि लोहे की कड़ाई में गिरे हुए जल के कण एक क्षण में, जैसे कि तवे पर एक बूंद डालो तो खत्म तुरंत, ठीक इसी तरह जिस रिद्धि के प्रभाव से, तप्त तप रिद्धि के प्रभाव से वो जो भी आहार डालते हैं वो सब भीतर जाकर के और मल मूत्र से रहित, उसका वेस्ट होता ही नहीं, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर जाकर के पूरा का पूरा शरीर में एब्जॉर्ब होता है। ऐसी रिद्धि तप के द्वारा प्राप्त हो जाती है, उसको कहते हैं तप्त तप रिद्धि। और फिर महोग्र तप, या कि महातप रिद्धि, वो कहलाती है। एक विशेष प्रकार का तप होता जिसमें एक उपवास एक आहार, दो उपवास एक आहार, तीन उपवास एक आहार, चार उपवास, इस तरह से बढ़ते चले जाते। सिंह निष्क्रीड़ित नाम का व्रत है, और पहले 15 उपवास तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद एक आहार, फिर 14 उपवास, फिर एक आहार, फिर 13 उपवास, फिर एक आहार, फिर 12 उपवास। ऐसा महातप करने की सामर्थ्य जिनको प्राप्त हो जाती वो रिद्धि कहलाती है महोग्र, या कि महातप रिद्धि। फिर घोर तप, घोरम तपोचा, घोर तप वो कहलाती है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के भीषण रोगों से युक्त है देह। देखना, किसी असाता के उदय से जिनकी देह तो हो गई है रुग्ण, लेकिन इसके बावजूद भी और उस रिद्धि के प्रभाव से वे विभिन्न प्रकार के तप करते हैं, जिसमें कि अनशन अमोदर इत्यादि विभिन्न काय क्लेश महीनों महीनों एक ही स्थान पर ध्यान में लीन रह जाते हैं, जबकि व्याधियां उनके शरीर को घेरे हुए हैं, फिर भी वे उन्हें कोई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं उस रिद्धि के। और भी लिखा हुआ है कि ऐसे भयानक स्थान में जहां की कोई व्यक्ति जा भी नहीं सकता, वहां पर निर्भय होकर के और आसपास सिंह इत्यादि विचरण कर रहे हैं, फिर भी वे शांत भाव से आत्मस्थ रहते हैं, वो कहलाती घोर तप रिद्धि। इस तरह की सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती, भयभीत नहीं होती। और फिर कहते घोर पराक्रम रिद्धि, जिससे कि जो तप और योग हैं वो निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। पहले दीक्षा के समय अगर दो उपवास किए हैं तो जीवन भर अब दो उपवास के बाद एक आहार, फिर दो उपवास, फिर एक आहार, फिर दो उपवास, और दूसरे प्रकार से दो, अभी दो उपवास पूर्वक आहार लिया था, अब अगले दिन चार उपवास पूर्वक आहार, फिर आठ उपवास पूर्वक, बढ़ते ही चले जाएंगे। अब बताइए आप इस तरह की रिद्धि के सामर्थ्य से, अब कैलकुलेशन करें, कई कई बार ऐसा लगता है अब थोड़ी संख्या तक तो बढ़ेगी, अब दो उपवास से चार हो गए, चार से आठ हो गए, सोलह हो गए, कितने होते चले जाएंगे, फिर तो चार महीने उपवास और एक आहार, छह महीने उपवास और एक आहार, इस तरह के बढ़ते बढ़ते जो है ऐसा जीवन भर जिनके तप बढ़ती ही चले जाते हैं, तप उसको कहते घोर पराक्रम, इतना बल उनके भीतर होता है कि वो इन सबको सहज रूप से कर लेते हैं। इस तरह से ये एक और रिद्धि बची, इसमें कौन सी, अघोर ब्रह्मचरी रिद्धि, जिसमें कि वे अखंड ब्रह्मचरी को धारण करते हैं, और इतना ही नहीं उस रिद्धि के प्रभाव से उनके आसपास कहीं कोई भी दुखद घटनाएं घटित नहीं होती, कोई भयानक जीव इत्यादि नहीं आते, कोई भी जहां आक्रमण इत्यादि या और भी जो ईति जिसको अपन कहते हैं अतिवृष्टि अनावृष्टि, कुछ भी नहीं होता, सुकाल हो जाता है जिनकी उस रिद्धि के प्रभाव से, अन्य जीवों के लिए भी उनके आसपास का वातावरण बहुत सुखद हो जाता, वो कहलाती है घोर ब्रह्मचरी रिद्धि। इस तरह से अपन ने इतनी चर्चा इन रिद्धियों के बारे में करी, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो अपन दो श्लोक बाद में करेंगे। इस तरह ये सभी रिद्धिधारी मुनि महाराज, इनके हमें दर्शन हो ऐसी भावना भाएं, और दर्शन नहीं हुए तो कम से कम इनका स्मरण करके हम अपने परिणाम भी इनके जैसे अच्छे बना सकें, ऐसी भावना तो भाना ही चाहिए। ये बच्चे लोगों ने प्रश्न लिख करके छोटे छोटे रख दिए, एक आचार्य श्री का भजन सुना दो आप, फिर एक क्या है, ज्ञान के कितने भेद होते हैं, सीख रहे हैं वो लिखना, लिखने में खूब गलतियां हैं, देखो कितने भेद लिखा है, भेद लिखना भैया, पाफा बाभा बात से काम नहीं चलेगा, ज्ञान के कित, ज्ञान के कित नाम एक ही मात्रा भूल गए, कितन लिखा हुआ है, फिर बा में एक ही मात्रा रहा तो वो काट दी उसको, गड़बड़ हो गई, इसलिए फिर सीख रहे हैं बच्चे लिखना, ठीक है अच्छी बात, तुम्हारा प्रश्न हमने पढ़ के सुना दिया है, इसलिए तुम्हारा लिखना, अब इनको देखने सबने बंद बंद करके रखे हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न एक साथ उठते हैं और कुछ निश्चित नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे मन को शांति मिले, नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि विशुद्धि कम होने की वजह से ज्ञान का शोपसम भी कम हो जाता है, और प्रश्न तो बहुत से उठते हैं लेकिन उनका समाधान मन में नहीं आता, और अगर थोड़ी देर को उस समाधान से हमें समाधान नहीं आ रहा है, प्रश्न बहुत उठ रहे हैं मन में, तो एक स्ट्रेस मन के ऊपर पड़ता है, एक तनाव मन में आता है कि कैसे इनका आंसर पाऊं, उस समय अपन प्रयत्न भी करेंगे तो प्रयत्न सफल नहीं होगा, उस समय तो पंच नमस्कार स्मरण करें, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ेगी और अगले क्षण आसानी से उनके उत्तर आना शुरू हो जाएंगे, या फिर साधु जनों की संगति करें। हाँ, हम आपको एक आध बार सुना चुके हैं कि जब सनस्सी में और मैं छुल्लक था तो बहुत सारे पढ़ते थे, तो बहुत उतना अल्प ज्ञान, अभी भी अल्प ही है ज्ञान, पर बहुत प्रश्न उठते थे मन के अंदर, और मन होता था कि आचार्य श्री से पूछें, तो एक बार लिख लिए 10-15 क्वेश्चन और लिख करके गए आचार्य श्री के पास, तो आचार्य श्री अपने अध्ययन में लगे थे, तो अपन दूर बैठ गए कि जब उनका पूरा होगा तो वो देख लेंगे तो अपन पूछ लेंगे, तो थोड़ी देर बैठे 10 मिनट और फिर प्रश्न पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते और प्रश्न आचार्य श्री के पास बैठे बैठे ऐसा लगा कि इन सब के उत्तर तो मुझे आते हैं, मुझे काहे को पूछना बेकार में, परेशान करो महाराज को, सो नमोस्तु करके जाने लगे, तो आचार्य श्री बोले क्यों क्या बात है, उनने देखा कि मुझे देर हो रही है इसलिए शायद उठ के चला गया कि अब फिर आएंगे, क्यों क्या बात है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, कुछ प्रश्न पूछना थे, तो बैठो मैं अभी बताता हूं, नहीं मुझे तो लग रहा है कि मुझे सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए। तो हंसने लगे, आशीर्वाद दे दिया, अपन चले गए। ये क्या चीज है? हमें विशुद्धि वाले व्यक्तियों के सानिध्य में बैठने अकेले से हमारी विशुद्धि बढ़ती है और हमारे ज्ञान का शरोपसम हो जाता है। लेकिन आज तो उल्टा ही मामला है, हैं? अपन तो अपने ही प्रश्न और अपने को उलझाने के लिए, और इतने नहीं प्रश्न पूछ करके सामने वाले को भी उलझन में डाल देंगे। ऐसा तो अपना ज्ञान हो गया, जबकि लिखा है कि प्रश्नः प्रश्नः स्वयं प्रश्नः परिवर्ते मुहूर्ते उत्तर जायते। पूछो पूछो, अपने आप से पूछो, वे प्रश्न तुम्हारे भीतर अगले क्षण उत्तर बन करके स्वयं आ जाएंगे। लेकिन ये इसके लिए बहुत विशुद्धि चाहिए, अपने आप से पूछ के अपने भीतर ही उसका समाधान, आत्मा में ही उसका समाधान है। दूसरा तो सिर्फ निमित्त बनेगा, हाँ कोई बहुशुद्धवान है तो वो निमित्त बनेगा, ग्रंथ भी निमित्त बनेंगे, पर आएगा समाधान हमारे ही भीतर। ये बाकी तो सब बाह्य निमित्त हैं, हमारी अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान का स्वरूप सम होगा, तब समाधान मिलेगा। कोई कितने भी समाधान समझा देवे, जब तक हमारा खुद का नहीं है स्वरूप सम, तो कोई मानेगी नहीं, मानने को तैयार नहीं। विशुद्धि चाहिए समाधान पाने के लिए, इसलिए वो कोशिश करनी चाहिए। जैन धर्म की प्रथम पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई? भैया ये तो अपन एकदम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि प्रथम पुस्तक पर ऐसा सामान्य रूप से जो है वो प्रचलन में तो यही है कि सबसे पहले और पुरुषोत्तम भूतपति आचार्य ने, क्योंकि धर्मसेन स्वामी तक तो सब कुछ श्रुति के माध्यम से उनको ज्ञान था, इसलिए जब तक स्मरण में रहता है तब तक लिपिबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर बाद में जब स्मृति भंग होने लगी और स्मरण में नहीं रहने लगा ज्ञान, तो फिर उन्होंने दो शिष्यों को जिनकी अच्छी स्मृति थी उनको सारा आगम का ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने 180 सूत्रों में और षटखंड आगम के पहले नंबर लिपिबद्ध किया। ऐसा भैया मुझे इतनी जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी और मैं पता करके बताऊंगा कि किसको हम पहली पुस्तक माने। अभी तक तो 180 सूत्रों की जो षटखंड आगम है उसी को माना गया है। जब हम मंदिर में अभिषेक करते हैं तो हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्या होगा भगवान के दर्शन और अभिषेक करने से, ठीक है, मतलब क्या फायदा होने वाला, ये क्या है, अपन लोग व्यापारी हैं, नफा नुकसान का अपन को बहुत हो रहता है, आदत नहीं है, वो सुमार है कि जो कर रहे हैं तो दो पैसे। माने एक बार तो ये हुआ कि उनने कहा कि सुनो ऐसे कर्म करोगे तो कहां जाओगे, उनने कहा अपन को इससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाए कि तो क्या नरक चले जाओगे, कहते उतरे भी दो पैसा को अगर इंतजाम हो तो अपन उतरे भी जाओगे, क्या अपनी दुकान चलो चाहिए तो दो पैसा को अपन को मुनाफा हो तो नरक में भी चले जाएंगे, इतनी जो है नफा नुकसान की। अरे भैया नफा नुकसान तो संसार वाला सोचता, लाभ हानि का झगड़ा मिट जाता है, यही दर्शन से फायदा है। संसार लाभ हानि जय पराजय सुख दुख का नाम ही संसार है, और जिनके सामने आकर के क्या सुख दुख क्या लाभ हानि क्या जय पराजय परिणाम क्षण भर को स्थिर हो गए, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है, इसी को आप लाभ कहो। हम तो यही उत्तर देते कि भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक से क्या लाभ होता है ऐसा पूछो तो हम तो यही कहेंगे कि लाभ हानि का झगड़ा ही मिट जाता उसकी देर के लिए, नहीं तो सारा संसार उसी लाभ हानि राग द्वेष सुख दुख में पड़ा हुआ है। हम उतनी देर को कम से कम निर्विकल्प हो जाते कि कोई मतलब नहीं, लाभ हो तो हानि हो तो, हम तो भगवान के सामने खड़े हैं उनकी पूजा पाठ। तो इसलिए अपन को दर्शन अभिषेक करते समय अगर मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्या होगा इससे क्या लाभ मिलने वाला, तो फौरन अपने मन में ये भी आना चाहिए कि देखो मेरे परिणाम निर्मल हुए, यही तो मुझे लाभ हुआ, संसार के प्रपंच से बच गए, राग द्वेष से थोड़ी देर को बच गए, ये क्या कमती लाभ है, अब इससे ज्यादा और कौन सा लाभ हम चाहते हैं, हम सांसारिक लाभ क्यों चाहें, ये इतना बड़ा लाभ मिल गया।